45 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धार का स्वीकार किया था। मुझे मालूम है कैसे धीरे धीरे मैं प्रभु में आगे बढ़ाऊं। आज मेरे अंदर ये पीड़ा रहती है कि जो प्रभु को जानना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उस सच उत्पन्न के अंदर उस विश्वास का सच्चा अर्थ समझ सके, और जब वो समझ जाते हैं और जब उसको अपनाते हैं तो फिर उनके सामने वो सारी जो प्रश्न चिन्ह होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होते चले आते हैं। प्रश्न बने रहते हैं लेकिन फिर भी प्रभु का आंसर मिलता जा रहा है। सो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, एक विश्वासी का जीवन का आरंभ विश्वास, हमारा विश्वास का जीवन। पिछली बार में हमने इस बात को देखा था और हमने देखते हुए हमने इब्रानियों उसके 11 अध्याय के पहले से तीन पद पर विचार किया था, पहले से तीन पद पर। आइए मेरे साथ 6 पद तक पढ़िए, इब्रानियों उसका 11 अध्याय 1 से 6 पद तक हम पढ़ेंगे। और आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, विश्वास का आरंभ या विश्वास की बुनियाद, विश्वास की शुरुआत क्या है। अब आज विश्वास की चाल, वॉक इन फेथ, इस विश्वास में हम कैसे निरंतर चलते रह सकते हैं, कैसे हम निरंतर आगे बढ़ सकते हैं, कैसे विश्वास में मजबूत हो सकते हैं, कैसे हम विश्वास में चल सकते हैं। विश्वास कर लेना एक अलग बात है, विश्वास को ले लेना अलग बात है, लेकिन विश्वास में बने रहकर बढ़ते रहना, चलते रहना, आगे बढ़ना, यह अलग बात है। एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म ले लेना अच्छा है, लेकिन अगर वो बच्चा, उसकी ग्रोथ ना हो, उसकी बढ़ोतरी ना हो, तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। जो जन्म देने वाली मां है वो चिंतित और विचलित हो जाती है, परिवार चिंतित हो, और फिर उसको किसी ना किसी उपचार की जरूरत पड़ती है। ठीक इसीलिए से अगर हमने विश्वास के द्वारा, विश्वास और परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्म लिया है, हमने जन पाक को पा लिया है और हम अब परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, तो प्रश्न यह है क्या संतान होने के बाद अब मैं उस विश्वास में ग्रो कर रहा हूं, ग्रोथ हो रही है मेरी, बढ़ोतरी हो रही है, नहीं हो रही है? क्या मैं दिन पर दिन बढ़ता जा रहा हूं, बढ़ती जा रही हूं, नहीं बढ़ता? अगर मेरा जीवन में उस विश्वास में दिन पर दिन बढ़ोतरी नहीं है, या बढ़ नहीं रहा हूं, या बढ़ नहीं रही हूं, तो एक प्रश्न मेरे जीवन में होना है, मुझे सोचना है। So, आज सुबह हम इसी दूसरे पहलू पर देखना चाहेंगे कि ना केवल विश्वास कर लेना काफी है, विश्वास के द्वारा उद्धार पा लेना काफी है, विश्वास के द्वारा पापों की क्षमा को प्राप्त कर लेना काफी है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के आनंद में सहभागी होना काफी है, लेकिन अब विश्वास में बने रहना और बने रहने के साथ साथ विश्वास में बढ़ते रहना, यह अनिवार्य है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं, यह शायद परमेश्वर की योजना में हुआ। जब हर्षित भैया लोग जा रहे थे तो उन्होंने मेरे से कहा, पहले कहा कि हम 4 हफ्ते नहीं रहेंगे, आपको 4 हफ्ते को मंडली में वचन की सेवा को देखना है। और मैं सोचना विचारने लगा और मेरे अंदर, मैं जब प्रार्थना कर रहा था, विचार कर रहा था, यह मेरे अंदर एक बोझ बनता चला आ रहा था। और आज जो वर्तमान की हम परिस्थिति को देख रहे हैं, उन सारी वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए ये मेरे और आपके लिए बहुत अधिक अनिवार्य हो जाता है कि हम इस पिन परसे में अपने विश्वास को देख सकें कि हमारा विश्वास कैसा है, हम किस तरह से उस विश्वास में थमे रहेंगे, बने रहेंगे। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। सो आइए इब्रानियों 11 अध्याय 1 से 6 पद तक मैं ध्यान से आपके साथ पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम उधर जाएंगे जो आज हमने स्थल को पढ़ा था। इब्रानियों 11 अध्याय पहले पद से 6 पद तक। विश्वास तो आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, इसी के कारण प्राचीन काल के लोगों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वासी से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना ऐसी की गई है जो कुछ देखने में आता है वो दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया था। विश्वासी से हाबिल ने परमेश्वर के लिए कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया जिसके द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई और परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी। यद्यपि हाबिल मर चुका है फिर भी विश्वास के द्वारा अब तक वो बोलता है, यद्यपि हाबिल मर चुका है फिर भी विश्वास के द्वारा वो अब तक बोलता, अर्थात उसकी गवाही अब तक पाई जाती है कि उसी विश्वास के द्वारा उसने एक उत्तम बलिदान को चढ़ाया है। और वो उत्तम बलिदान, ध्यान दीजिएगा, इसलिए बोल रहा है कि वो बलिदान जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ था, बलिदान से, वो बलिदान, मैं बार बार बोलता हूं कि पुराना नियम परछाई है नए नियम की, वो बलिदान जो हाबिल ने चढ़ा था, जिस बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न हुआ था, वो बलिदान आने वाले दिनों के लिए एक परीक्षाएं थी कि एक उत्तम बलिदान होगा जो प्रभु यीशु मसीह का होगा, जो उसके द्वारा उसका परमेश्वर पिता प्रसन्न होगा, जिसकी प्रसन्नता के द्वारा उसका मन भरेगा और उसको बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। और वो बलिदान हाबिल का बलिदान, जो उससे उत्तम बलिदान प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हो गया, आज तक वो बोल रहा है। और इसलिए वो कह रहा है, तब वो आगे चल के कहता है पांच पद में, विश्वासी से हनोक ऊपर उठा लिया गया कि वो मृत्यु का ना देखे, उसका फिर पता ना चला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसके लिए ये गवाही दी गई थी कि उठाए जाने से पूर्व वो परमेश्वर को प्रिय था। छठवां पद, विश्वास के बिना उसे अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना असंभव है। करा असंभव, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वो है, यानी कि वो था, लेकिन वो है, आज भी वो है, परमेश्वर वर्तमान में है, हमेशा परमेश्वर साथ प्रेजेंट जुड़ा हुआ है, वर्तमान आज है, वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आज का मुख्य पद ये छठा पद है, मुख्य पद छह पद, बिना विश्वास उसे अर्थात परमेश्वर को प्रश्न करना असंभव है। जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए विश्वास करना आवश्यक है कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। पिछली बार हमने देखा था विश्वास क्या है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को रचा और इस सृष्टि सबसे बड़ा प्रमाण देती है, और इसीलिए रोमियो उसके एक अध्याय और उसके 20 पद में ये स्पष्ट लिखा है कि कोई उसका इनकार नहीं करता क्योंकि उसकी सृष्टि परमेश्वर के होने का प्रमाण देती है। यह हमने पिछली बार देखा था, यह सच है। और लोग उस बात को देख करके चातारे हैं, आकाश है, समुद्र है, ये सारी चीज को देख के किसने रचना की है। और तब हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा महान अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर है, स्वामी है, जो कुछ नहीं से कुछ बना सकता है। हर एक व्यक्ति या संसार या विज्ञान भी कहता है अणु से संसार की रचना हुई, और तरह तरह की थ्योरी आप जानते हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन जितने भी कहते हैं वो ये कहते हैं कुछ से कुछ बना। लेकिन बाइबल ये कहती है कि कुछ नहीं से कुछ बनाने वाला ही एकमात्र परमेश्वर है। और हमने पिछली बार इस बात को बहुत ही विस्तार से देखा था, बीच बीच में मैं दोहराता जाऊंगा। अगर वो परमेश्वर है, ठीक है, तो वो क्या कह रहा, अब क्या कह रहा परमेश्वर का वचन। इब्रानियों का लेखक एक ऐसा अध्याय, इब्रानियों का लेखक इस बात को वर्णन करता है जो मैंने पिछली बार समझाया था, क्यों इस सारी चीज को कर रहा है, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे प्रश्न थे, कार्य को लेके, कर्म को लेके, व्यवस्था को लेके विचारधाराएं थी। और वो ये बता रहा है कि भैया तुम व्यवस्था को कर्म की बात कर रहे हो, हम उत्पत्ति के आरंभ से पहले दिन से विश्वास को देखते हैं। और तब उसके बाद वो इस 11वें अध्याय को वर्णन करते हुए एक बहुत बड़ी सूची देता है, और उस सूची में इन लोगों का वर्णन करता है जिन्होंने अपनी विश्वास के द्वारा यात्रा को आरंभ किया, यात्रा को पूरा किया। उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, संघर्ष आई, कठिनाई आई, समस्याएं आई, रुकावटें आई, यहां तक कि परीक्षाएं आई, यहां तक कि पाप का आक्रमण हुआ, क्योंकि वो भी मेरे और आपके समान मनुष्य थे, और इन सब कुछ पर आक्रमण होने के कारण भी वे परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण, परमेश्वर को ताकने के कारण, परमेश्वर को देखने के कारण वो विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते गए और उन्होंने उस चीज को प्राप्त किया जो अद्भुत है। तो जब वो कह रहा है तब आगे तो कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रश्न करना अनुभव है। विश्वास किस पर? मैंने फिर से आपसे कहा कि विश्वास यीशु मसीह पर, जो हमारा पात्र है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों प्रभु यीशु मसीह पर? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो न केवल सृष्टि करता है, लेकिन वो मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया, और इसलिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करे। सुसमाचार यीशु का जीवन, सुसमाचार यीशु की मृत्यु और बलिदान, यीशु मसीह, सुसमाचार यीशु मसीह का पुनः जी उठना और वापस आना, इस पर विश्वास करना। हम अद्भुत रीते जैसे हम नए नियम में आते हैं, नए नियम में जैसे हम आते हैं, हम ये देखते हैं इससे पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो, और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह से पहले यूहन्ना को भेजा गया, और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार किया। क्या प्रचार करना यूहन्ना ने शुरू करा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उससे कहा, मन फिराओ, पश्चाताप करो, उस पर विश्वास करो, पश्चाताप के फल लाओ। यही उसका संदेश था, यही प्रचार था। मन फिराओ, पश्चाताप करो, पश्चाताप के फल लाओ, विश्वास करो, ये उसका प्रचार था। जब प्रभु यीशु मसीह आया, समय नहीं कि मैं उन पदों को खोलूं, लेकिन आप हर उत्पत्ति के पहले अध्याय को, तीसरे अध्याय को देखेंगे, आप लूका के दूसरे अध्याय को देखेंगे, यही चीजें वर्णन है। फिर उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह का भी यही संदेश था, मन फिराओ, पश्चाताप करो, विश्वास करो। जब हम प्रेरित काम की में आते हैं, जब कलीसिया स्थापित हो गई और प्रेरित प्रचार करने लगे, प्रेरित के प्रचार का भी यही विषय था, मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने पापों को मान लो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। और आज भी यही सुसमाचार का प्रचार है। क्यों? सारा मानव जाति पाप में है। परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया, सबने पाप किया और सब परमहिमा से रहित है। सब में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोला हो चाहे काला हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, चाहे कोई भी किसी भाषा का हो, किसी भी रंग का हो, कोई भी, सबने। यहां तक कि परमेश्वर वचन कहता है कि मनुष्य पाप पे जन्म लेता है, बच्चे पाप पे जन्म लेते हैं। हर एक ने पाप किया। क्या 2.5 साल 3 साल के बच्चे हैं, उनको विश्वास की जरूरत? उनको विश्वास की जरूरत है। परमेश्वर ने एक उम्र रखी है, लेकिन सब ने पाप किया, उस सब में सब आ गए, छोटा बड़ा सब लोग आ गए, और सबको उस सुसमाचार पर विश्वास करने की जरूरत है। बिना सुसमाचार पर विश्वास करे मनुष्य अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त नहीं करता। केवल कह लेना कि विश्वास करना, लेकिन विश्वास साथ रिस्पॉन्स करना, प्रत्युत्तर देना है। सो ये है, और इसलिए हम आराम से देखते हैं कि ये वचन प्रचार किया गया। जब इस बात को हम देखते हैं तो सच है परमेश्वर का वचन अब आगे, ठीक है तुमने विश्वास कर लिया, अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें, अगर तुम्हें परमेश्वर को प्रश्न करना है, अब तुम्हें अगर परमेश्वर को प्रश्न करना है, केवल उस पर विश्वास करने द्वारा, ठीक है तुमने प्रश्न कर लिया, हमने उसके संतान बन गए, सब कुछ बने, लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर तुम चाहते कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन से प्रसन्न हो उन बातों को, तो तुम्हें इस बात को जाना है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, और तुम्हारा जीवन, मेरा और आपका जीवन इस प्रकार से व्यतीत होना है कि हर परिस्थिति में, हर समय में हमें परमेश्वर को लेके आगे चलना है। और इसीलिए पिछली बार में मैंने आपको नूह के बारे में बताया था, नूह का कुछ उदाहरण दिया था। नूह की पुस्तक को जब आप देखते हैं, नूह में हम 2-3 बातों को देखेंगे। उत्पत्ति में आइए, आज 2 जीवन को संक्षिप्त में हम देखेंगे, नूह और अब्राहम के बारे में, किस प्रकार से, क्यों परमेश्वर के वचन में नूह की उत्तम, बहुत सारी साक्षी हैं, लेकिन उत्पत्ति उसके 6 अध्याय में आ जाइए। 6 अध्याय में क्या वो कह रहा है नूह के बारे में? 8-6 अध्याय के पद, परंतु यहोवा की कृपा दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों? नवे पद में नूह की वंशावली है, नूह तो धर्मी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तीन बातें थी, नूह धर्मी, नूह निर्दोष, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। एक विश्वासी की चाल परमेश्वर के साथ साथ चलने वाली होनी है, इसलिए यह हमारी मसीह वाक्य है। विश्वास करने ला काफी नहीं है, लेकिन प्रतिदिन के जो चाल है हमारा है, जो जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना है। और इसलिए उसके लिखा है। तो इन तीनों बातों में क्यों, कौन सी बात थी? जब मैं विश्वास की बात करता हूं और मसीह में चलने की बात करता हूं, तीन चार बातें और आपके सामने लाना चाहूंगा। सबसे पहली बात, एक विश्वास में बने रहना वाला व्यक्ति, एक विश्वास में चलने वाला व्यक्ति, एक विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रश्न करने वाला व्यक्ति, उसका जीवन पहली बात परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। पहली बात, एक विश्वास में बने रहने वाला व्यक्ति, एक विश्वास के साथ चलने वाला व्यक्ति, एक विश्वास के साथ जीने वाला व्यक्ति, पहली बात उसका जीवन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। नूह के बारे में क्या लिखा हुआ है? तीन बार नूह के बारे में आया है और उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। 6:22, जैसी परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी नूह ने ऐसा ही किया, उसने सब कुछ वैसा ही किया। जैसी उसे क्या क्या गई थी? आज्ञा दी गई थी। जैसी उसे आज्ञा दी थी, नूह देख के संसार की स्थिति क्या हो रही है, मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है, मैं व्याकुल हूं, मैं दुखी हूं, मैं पीड़ा में, इन्होंने कैसा किया है, अब मैं इनके साथ ऐसे बता करना जाना तैयार हूं। लेकिन नूह तुझे एक काम करना होगा। पर मैं मुझे एक काम करना होगा? हाँ, तुझे इस ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई पूरी रीति से उसको चित्र दिया। बाइबल की एक विशेषता देखिए, शुरू से बाइबल में ध्यान सुनेगा, जब भी परमेश्वर छुटकारे की, बचाव की कोई भी योजना सामने रखता है, वो पूरी योजना दर्शाता है। नूह का जहाज बनाया गया, परमेश्वर ने उसकी योजना पूरी दिखाई, ऐसे से बनाना, ऐसे से बनाना। जब आगे बढ़ते हैं, निर्गमन में आप आते हैं, वाचक का मिलाप वाला तंबू बनाया गया, परमेश्वर ने उस तंबू को के पूरा चित्रण एक एक करके दिया, ऐसे 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 करके इस नाप से बनाना। जब आगे चल के वो तंबू हट गया, वाचक का तंबू हट गया, जब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा इस प्रकार से तू ये बनाना, भवन बनाना, उसको पूरा चित्रण दिया गया, पूरा उसको नाप दिया गया परमेश्वर। जब परमेश्वर ने उसको हटा दिया उन सारी चीजों को, क्योंकि वो पुरानी चीजें केवल प्रतीक के रूप में थी, प्रतीक में, क्योंकि परमेश्वर एक स्थाई चीज को बनाने जा रहा था और वो स्थाई चीज कलीसिया है, और कलीसिया को परमेश्वर ने एक स्थाई नगर देना है, वो नगर जो जिसमें हम आगे जाके प्रवेश करेंगे। इसीलिए विश्वास की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और जब प्रकाश स्वर्ग में आते हैं, उस नगर का पूरा पैमाना और पूरी चित्रण साफ स्पष्ट दिया गया है। तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य तक, जब भी हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं, हमारा परमेश्वर सबसे उत्तम आर्किटेक्ट है। अद्भुत बात है, यह परमेश्वर की विशेषता है। परमेश्वर अधिकार में, आधार में नहीं लटकाता, यह परमेश्वर की विशेषता है। सो यहां पर हम इन बात को देखते हैं। लेकिन 22 पद में उसने कहा कि तो उसने आज्ञा को माना। 7:5, यहोवा ने नूह को जैसी आज्ञा थी उससे सब कुछ वैसा ही किया। 9 में जंतुओं में से दो दो अर्थात जहाज में गए जैसी परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। बार बार परमेश्वर का वचन इस बात कह रहा है, 6:22 में, 7:5 में, 7:9 में, जैसे आज्ञा दी थी नूह ने वैसा ही किया। एक विश्वास में चलने वाला जीवन, क्या हमने देखा था? विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। नूह को नहीं मालूम परमेश्वर जहाज क्यों बनवा रहा है। अरे इतना बड़ा जहाज 120 साल लगे, 120 साल में वो जहाज बना रहा था, बनाता चला जाता, लोग आ रहे होंगे, ओ नूह तू ये क्या कर रहा है? भैया मैं जहाज बना रहा हूं। क्यों जहाज बना रहा है? परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो, तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम नाश हो जाओगे, बहुत बड़ा आने वाले दिन में बाढ़ आएगी, ये सब कुछ होगा, अरे नो तू मूर्ख है। आज जब आप सुसमाचार को सुनाते हैं लोगों को, क्या सब लोग विश्वास कर लेते हैं? क्या सब लोग तुरंत उत्तर दे देते हैं? कितने लोग मुझे और आपको मूर्ख समझते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु का नाम धन्य है, अद्भुत है। नूह को भी लोगों ने मूर्ख समझा था, नूह को भी लोगों ने मूर्ख समझा था, लेकिन क्या करा था नूह? केवल एक काम करा था, जो परमेश्वर ने उसको कहा था उसको वो पूरा करा था। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जीने के बाद स्वर्ग में जाने से पहले उसने अपने शिष्यों को बुलाया और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक निर्देश देता हूं, जाओ जगत के सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें शिष्य बनाओ और देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। उसने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, लोग तिरस्कार करेंगे, लोग इनकार करेंगे, लोग तुम्हारा ठट्टा उड़ाएंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग नहीं समझेंगे क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को बंद कराए, लेकिन तुम जाओ सारे जगत में जाकर उसके सुसमाचार का प्रचार करो। मेरे प्रियो, ये नूह कर रहा था, ये नूह कर रहा था, और वही परमेश्वर ने मुझे और आपको करने के लिए कहा है। हमारा परमेश्वर आदि से लेकर सनातन तक एक परमेश्वर है, उसकी योजना सनातन से लेकर आज तक एक जैसी है। मनुष्य बदलता है, परमेश्वर की योजना नहीं बदलती, यह अद्भुत बात है। तब वो यह कब कहता है? सो पहली बात मैं जो आपके सामने लाना चाहता हूं यह है कि जब सचमुच में हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज यह है कि हमारे जीवन में एक आज्ञाकारिता उत्पन्न हो जाती है। आसान नहीं होता, मुझे मालूम है, मैं भी आप ही के समान हूं, मुझे भी उस स्थिति से जाना पड़ा है, मुझे भी संघर्ष में करना पड़ा है, आज भी करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ करता है। कारण क्या था? नूह परमेश्वर की ओर देख रहा था। नूह पर नूह को नहीं मालूम था कि 120 साल बाद क्या होगा, कौन इसमें बचेगा, कैसे क्या होगा, लोग कितने आएंगे, क्या संसार होगा, कैसे पानी सूखेगा, कैसे वो कौए को उड़ाएगा और कौए का पता नहीं चलने पाएगा, फिर कैसे वो एक कबूतर को कबूतरी भेजेगा, फिर दूसरी कबूतरी भेजेगा, फिर तीसरी कबूतरी। पढ़ के देखिए, पहले इन 6-9 अध्याय को उत्पत्ति के घर में जाके पढ़िए, बहुत सुंदर चित्रण है, आपको मालूम चलेगा नूह के विश्वास के बारे में। मेरा और आपका विश्वास कैसा है? क्या हमारी दृष्टि परमेश्वर की आवाज पर लगी है? मैंने कहा था विश्वास कहां से आरंभ होता है? वचन को सुनने से। परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, हमारे मस्तिष्क में कुछ कार्य आरंभ होता है, उससे हम समझते हैं, हृदय से हम ग्रहण करते हैं, मुंह से हम अंगीकार करते हैं, जीवन को हम समर्पित करते हैं और तब हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे कानों में आता है, उस वचन को हम समझते हैं, समझने के बाद हृदय में हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने बाद हम उसका मुंह से अंगीकार करते हैं, हम जीवन को समर्पित करते हैं और तब हम। और अगर ये एक प्रक्रिया हमारे जीवन में नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कहीं ना कहीं। और तब इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि नूह के बारे में। आइए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर ने यहां इब्रानियों का लेखक नूह की साक्षी देता, बहुत कुछ बातें हम जो पर विचार करते हैं, लेकिन उसके बाद इब्रानियों 11 अध्याय में जब हम आते हैं, उसने कहा, हमने कहा कि बहुत सारी लंबी सूची है, यद्यपि हमारे एक सूची पर नहीं आते, लेकिन आज दूसरे व्यक्ति पर जो ठहरना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, उसके जीवन की साक्षी मेरे और आपके लिए बहुत अच्छी है। ये अब्राहम है, अब्राहम है। नूह के बाद आगे चल करके हम 8 पद में क्या देखते हैं? विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उसे उत्तराधिकार में मिलने वाला था। आज्ञा मानकर नूह के बारे में क्या देखा? उसने आज्ञा मानी। अब्राहम के बारे में क्या देख रहे हैं? आज्ञा मानी। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय, ये तीनों अध्याय में बार बार परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। 12 अध्याय में आज्ञा देता है उसको, अब्राहम तो जिस घर में, जिस स्थान पे, जो भूमि में, उसको छोड़ और उसको छोड़कर चला जा। मेरे प्रियो, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और उसके बाद हमारा विवाह हुआ, प्रभु हमसे बात करने लगा कि हमें सेवा में आना है, सेवा में आना है, सेवा में आना है, सेवा में आना है। बहुत लंबी कहानी है। और तब उसके बाद परमेश्वर स्पष्ट अगुवाई देने लगा, कहने लगा मुझे हमें लखनऊ छोड़कर बाराबंकी जाना है। हम नहीं जानते थे किसी को, हम बाराबंकी किसी को नहीं जानते थे, कोई हमें नहीं जानता था वहां, इतना वो भी नहीं था। बहुत इस समय आज से 30 साल पहले स्थिति की, उस समय की स्थिति बहुत अजीब थी, विचित्र थी, पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु हमें ले गया, प्रभु ने दया करी, प्रभु ने हमारी सहायता करी। हम नहीं जानते थे क्या कुछ प्रभु करने जा रहा है, आज हम देख रहे हैं प्रभु ने कहां से कहां पहुंचाया है। लेकिन वह समय था जब परमेश्वर मुझसे मेरी पत्नी से चाहता था कि हम दोनों जन मिल करके साथ होकर परमेश्वर पर ध्यान रखते हुए, उसकी बातों को ध्यान रखते हुए, उसकी आज्ञा पालन करते हुए कदम बढ़ा ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है और विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है और अंधे की वस्तु का प्रमाण है। परमेश्वर के योजना में जो चीज छुपी रहती है, गुप्त रहती है, वो मनुष्य नहीं जानता, लेकिन मनुष्य केवल यह जानता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक सनातन योजना बना रखी है जो उसके हाथों में है। केवल मुझे एक बालक होकर एक विश्वास करते हुए अपने आप को उसके हाथों में दे देना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है, बाकी वो करेगा। और तब परमेश्वर उन रैपर्स को खोल लेता है। किसी को आप एक गिफ्ट लाके दे दीजिए और आपने बहुत महंगी गिफ्ट उसके अंदर रखी हुई है, एक उपहार उसके अंदर रखा हुआ है, लेकिन उसमें कई सारे बॉक्स हैं और आपने बॉक्स को खोला हुआ है और एक बॉक्स, छोटे से बॉक्स में बहुत कीमती घड़ी, उसके ऊपर एक और आपने डब्बा रख दिया, उसको रैप कर दिया, फिर उसके बाद एक और डब्बा रख दिया, फिर उसको रैप कर दिया, फिर एक और डब्बा रख दिया, फिर उसको रैप रख दिया, आप कर दें। जब किसी को दे दें भैया ये क्यों, वो खोलता चलाएगा, परेशान हो जाएगा। वो धीरज रखना सरल नहीं है, सरल नहीं है, लेकिन अगर धीरज के साथ वो खोलता जाए, लेकिन थोड़े दिन अरे क्या मुझे परेशान कर, फेंक दो। लेकिन अगर वो धीरज के साथ वो रैपर खुलते जाए, लेकिन अंत में क्या मिलेगा, वो बहुमूल्य वस्तु। और कई बार परमेश्वर मेरे और आपके साथ ये काम करता है, परमेश्वर मेरे आपके साथ ये काम करता है, मुझे और उसको समझना है। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो हमें धोखा नहीं देता, वो हमारे साथ छल नहीं करता, वो हमारा इस्तेमाल नहीं करता, वो हमारे साथ मखौल नहीं करता, वो हमारे साथ हमें, वो जानता है कि हम क्या हैं। लेकिन उसके हाथ में, उसकी योजना में, उसके मन में हमारे लिए कोई चीज गुप्त छुपी हुई है। केवल वो चाहता है कि मैं उसकी आज्ञा का पालन करूं, उस पर निर्भर हूं। और तब अब्राहम के बारे में उसने आज्ञा मानी, आज्ञा मानने के बाद वो आगे बढ़ गया। ये सच है, आज्ञा मानने में सबसे पहला जो कदम आता है विश्वासियों के लिए जो मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो संसार से अलगाव का जीवन। हम विश्वास तो कर लेते हैं परंतु हम सेपरेशन को नहीं समझते, अलगाव को नहीं समझते, और हमें अलगाव में आना पड़ता है, चाहे हमारी पुरानी दोस्ती हो, मित्रता हो, चाहे हमारे संबंध हो, चाहे हमारी पुरानी इच्छाओं, चाहे हमारे यहां तक पुराने पहरावे हो, हमें अपने पुराने पहरावों से भी अलगाव करना पड़ता है। जब एक जन विश्वास में आता है, उनका पुराना पहले का पहरावा तो कुछ और है, संसार रीति से। हमारी बहनें जो पुराने जीवन से आती हैं, उनके जीवन में पुरानी चीजों के बहुत पुराने पहरावे हैं, जो संसार और शरीर और सारे रीति विधियों से चले आ रहे हैं। जब विश्वास में आते हैं, उनके लिए आवश्यक है उस पहरावे से भी वो अपने आप को अलगाव में लाए। अगर वे अलगाव में नहीं लाते तो कहीं ना कहीं वे बंधन में रहते हैं। और इसी कारण जिस प्रकार से उसका विश्वास दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई देते। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, शैतान बहुत चालाक है। एक व्यक्ति ने अपना एक घर बेचा और एक दूसरा जो खरीदार था उसने देखा घर बहुत अच्छा है, उसने घर खरीद के पैसों से दिए। तो जब रजिस्ट्री लिखी जा रही थी, पेपर तैयार किया था सब कुछ, तो इस व्यक्ति ने जो बेचने वाला था वो बहुत चालाक था। तो उसने खरीदने वाले कहा ठीक है सब घर आप ले लीजिए, ये जमीन भी सब कुछ है, सारी चीज आपकी है, सब कुछ है, लेकिन केवल ये कील जो है, ये कील मैं यहां छोड़ूंगा, बस ये कील मेरी आनी चाहिए। तो जो खरीद रहा था उसने कहा घर तो सब मुझे मिल रहा है, छोटी सी कील क्या करेगी। तो ठीक है कोई बात नहीं, कहा ठीक है। उसने रजिस्ट्री में पेपर में सब कुछ लिखवा दिया, जमीन इनकी है, सब कुछ है, और लेकिन ये कील इनकी है। ठीक है, बहुत कुछ हो गया। कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये व्यक्ति जिसने घर बेच दिया था आया, आकर उसने अपनी टोपी लाए और टोपी उस कील पे टांग कर चला गया। इसने जिसने नया घर खरीदा था सोचा कोई बात, टोपी टंगी हुई है। दूसरे तीसरे दिन आया, उसने क्या करा, टोपी कुटाई और छाता लाया, और छाता ला करके उसने उसका कील पे टांग दिया। कोई बात नहीं, छाता टंगा हुआ, छाता टंगा। कुछ दिन बाद फिर आया, उसने एक रस्सी लेकर आया, उसमें रस्सी में एक बकरी बांध कर लाया, बकरी, और बकरी बांध कर लाया, उसने रस्सी को उस कील पे बांध दिया। वो कहने लगे कि क्या कर रहे हैं, कि कुछ नहीं, मैं अपने उस कील पे मैं अपनी एक छोटी सी रस्सी बांध रहा हूं, बकरी को टहलने दीजिए, उसे कोई बात नहीं। और धीरे धीरे उसी कील में वो कुछ लाता और बांध देता, कुछ लाता और बांध देता। अब ये मकान मालिक परेशान, और जिसने खरीदा था परेशान होने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इसने उस कील को ऐसा इस्तेमाल करना चाहा कि उसी कील में वो कहीं पशुओं को बांध देता, एक रस्सी बांधता, उसी रस्सी में 10 जानवर को बांध देता, जानवर वहां गंदगी करते, सब कुछ करते, सारे कुछ करते, कील एक छोटी सी कील। और जब होती बात होती, कहता भैया मैंने तो पेपर में लिखा हुआ है ये कील मेरी, मैं केली को तो इस्तेमाल कर रहा हूं। और आते आते ऐसा हो गया, इस जिसने नया मकान खरीदा था, पैसा चुकाया था, इसकी नाक में दम हो गया, वो घर छोड़कर भाग गया, एक छोटी सी कील। मेरे प्रिय, ये हंसने की बात है लेकिन बहुत गंभीर बात है। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, लेकिन कोई ना कोई छोटी सी कील शैतान के हाथ में दे देते हैं, और वही कील में वो शैतान बांधता चला जाता, बांधता चला जाता। कुछ दिन तो मजा आता है, कुछ दिन तो इग्नोर कर, कोई बात नहीं, कोई बड़े, लेकिन वही कील बाद में हमारे विश्वास के लिए सबसे बड़ी हानि का कारण होती है, और हम फिर बैकस्लाइड हो जाते हैं, और फिर संसार में वापस चले आते हैं, और शैतान हमारा मौका लुटाता है। सावधान रहिए, क्या आपने सचमुच में उस आज्ञाकारिता में होकर पूरी रीति परमेश्वर की आज्ञा पालन के अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दिया है, या कोई कील आपके जीवन में आज ऐसी है जो शैतान के हाथ में है। सावधान, एक छोटी सी कील जिसने उस घर को बर्बाद कर दिया, मेरे और आपके सोचने में। सो यहां पर अब्राहम के बारे में भी देखते हैं आज्ञाकारिता, तब आगे चल के जल्दी से मारते हैं। रोमियो उसका 4 अध्याय उसका 17 पद, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उसकी दृष्टि में जिस पर उसने विश्वास किया, अर्थात परमेश्वर जो मृतकों को जिलाता है और जो वस्तु है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वो हैं। अब्राहम से क्या कह रहा है, अब्राहम की साक्षी क्या है, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, आज्ञा दी, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो चल दिया, अपने गांव को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा, अपने सब कुछ को छोड़ा, और जो परमेश्वर उसको कह रहा है वो चलता जा रहा है। और वो आगे कह रहा है कि वो परमेश्वर इस प्रकार से वो निर्भर हो गया, इस प्रकार से निर्भर हो गया कि जो वस्तु है नहीं नहीं उसका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। ना केवल आज्ञाकारिता है, लेकिन विश्वास के प्रतिदिन के चलने में हमारे जीवन को परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है, डिपेंडेंस ऑन गॉड, हमारी निर्भरता परमेश्वर पर होनी। ये अब्राहम परमेश्वर पर निर्भर हुआ था, केवल आज्ञा नहीं पालन करती, लेकिन वो नहीं जानता था क्या होगा, वो उसके सामने समस्या भी आ रही थी, कठिनाई भी आ रही थी, लेकिन हर बात में परमेश्वर पर निर्भर था। और वो कह रहा है कि वो ऐसी उन वस्तुओं का नाम लेता है जो नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मानो वो है। आपको इस चर्च कुछ कैसे बना, आपको शायद उनकी सारी कहानी नहीं मालूम है। जब हम लोगों ने इस स्थान को खरीदा, हम नहीं जानते थे, हमारे साथ कुछ भाई बहन थे, भाई देशराज भी उस समय थे, शायद ऋतु भी उस समय थी, और यहां पर एक छोटा सा कमरा था। हमने एक ड्राइंग बनवाई थी, और ड्राइंग बनाकर हमने ड्राइंग फैला के ऐसे रखा, और करीब 8 दर्जन हम घुटनों के बल हुए थे, हमने सबने विश्वास के साथ हाथ रखा। उससे पहले जब लैंड ली थी तो हमारे बोर्ड के भाई लोग आए थे, और एक बिल्कुल बंजर था, ये जंगल था, गड्ढा था, जंगल था। हमारे भाइयों ने यहां पर घुटने टेक कर स्थान पर प्रार्थना की थी, जंगल था उस समय। तब उस कमरे में ड्राइंग रखी जो हमने बनाई थी, और ड्राइंग रख करके हम घुटने बोल रहे, हमने सब ने उस ड्राइंग पर हाथ रखा, हमने कहा प्रभु हम नहीं जानते, लेकिन हम एक चीज की आशा कर रहे हैं, जो बात तो नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं प्रभु ये होगा, आप करेंगे। और उस पर घुटने टेक कर हाथ तक कर विश्वासियों ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की थी, और तब उसके बाद परमेश्वर ने इस स्थान को हमें दिया है। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर। जो बातें नहीं है, अब्राहम का यही विश्वास था। मेरे प्रियो, जब प्रभु मुझे और आपको बुलाता है, अगर हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो हमारी निर्भरता उसके पर है। हम अपने कल को नहीं जानते, लेकिन हम उसको जानते हैं जो हमारे कल को जानता है। फिर से मैं कहना चाह रहा हूं, हम अपने कल को नहीं जानते, लेकिन हम उसको जानते हैं जो हमारे कल को जानता है। और यह विश्वास मेरे और आपके जीवन में होना है। कई बार बहुत धुंधला दिखाई देता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमें अपने में स्वयं में युद्ध होता है, अंदर स्वयं में अंदर युद्ध होता है, संघर्ष होता है। लेकिन अगर हमारी निर्भरता यह है कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं कि जो हमारे कल को जानता है, हम उस पर निर्भर हो सकते हैं। यह विश्वास में चलना है, यह विश्वास में आगे बढ़ना है। यह परमेश्वर मुझसे और आपसे आता है। तब उसके बाद दूसरी बात कह रहा है, पहली बात आज्ञाकारिता, दूसरी बात निर्भर। तब 18 पद में क्या कह रहा है वो, उसने किसने भी अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा, अरे 100 साल का रहा हूं, परमेश्वर तो कह रहा है मैं तुझे संतान दूंगा, और वो संतान के द्वारा ये पूरी पृथ्वी में वो संतान फैल जाएगी। उससे वो तारे के जिस रीति तारे को लोग नहीं गिन पाते, बालू को नहीं गिन पाते, कणों को नहीं गिन पाते, अब्राहम तेरी संतान ऐसे बढ़ जाएगी। अरे परमेश्वर कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है, अब संसारिक रीति से शारीरिक रीति से कोई भी आशा नहीं कि संतान उत्पन्न हो, आप तो ऐसे कह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अपने कथन को कहकर पूरा करने वाला परमेश्वर है, और इसलिए वो कहता है कि उसने निराशा की दशा में, उसके लिए वो यात्रा उस मिस्र से निकलकर आगे बढ़ा सरल नहीं था, कठिन था, संघर्ष था, समस्याएं थी, अवरोध थे, परीक्षाएं थी, चिंताएं थी, विरोध था। वो सारा को दूसरे लोग उसकी ठट्टा उड़ाते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे, उसकी मजाक उड़ाते थे, डर था उसके अंदर। यहां तक कि जो आगे बढ़ा था उसने फिरौन के साथ मां जाकर सारा को अपनी बहन बता दिया डर के मारे। ये सब कुछ था, वो मेरे और आपके समान ही मनुष्य था। लेकिन एक बात समान ये बात थी कि समान एक बात ही थी, जिस परमेश्वर उसने विश्वास किया था उसी परमेश्वर पर मैं और आप विश्वास करते हैं, और इसलिए वो मेरे और आपके लिए आदर्श बन गया। वो कहता है कि निराशा में भी उसने आशा की, और हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं उस पर निर्भर रहते हैं। निराशा दिखाई देती है, लेकिन फिर भी हम जब प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो आशा दिखाई देती है। यह है चौथी बात। ना केवल तब कहता है, आगे चल के कहता है 18 पद में निराशा पर विश्वास किया, 19 पद में वो 100 वर्ष का था, अपने मृतक समान शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा को जानते हुए विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। विश्वास में निर्बल, निराशा में उसने आशा रखी, विश्वास में वो निर्बल नहीं हुआ। मेरे प्रियो, यह सच्ची बात है, शत्रु शैतान सबसे ज्यादा अटैक हमारे विश्वास पे करता है। गांव से निकाल दे जाते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, परिवार कह देते तुम चले जाओ, हमें तुमसे मतलब नहीं। आप एक डॉक्टर को जानते हैं, यहां पर आते हैं कई बार, डॉक्टर विजयकांत। जब उन्होंने विश्वास किया, उनके घर में उनके पिताजी काफी धनवान परिवार, कोर्ट में ले गए, और कोर्ट में लेकर लिखवा लिखा पढ़ाई कर दी कि आज से तुम्हारे लिए हमारी संपत्ति का कोई अधिकार नहीं, और उन्होंने उसको डॉक्टर विजयकांत को घर से निकाल दिया। जो कपड़े वो पहने हुए थे वो कपड़े पहनकर वो घर से निकल गए। लेकिन आज परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उस प्रभु के दास को इस्तेमाल कर रहा है। समझ गए, कितने लोग ऐसे हैं। डॉक्टर आनंद चौधरी का आपने नाम सुना होगा, अब वो प्रभु के पास चले गए। भाई आनंद चौधरी ने जिस समय विश्वास किया था, घर में बहुत विरोध था, अच्छे धनी परिवार से, पंडित पुजारी परिवार से सब कुछ थे, और एक ही दिन में उनकी मां, उनकी बहन कुंभ मेले में भीड़ में दबकर मर गई थी। लेकिन मरने से पहले उनकी मां ने एक बात उनसे कही थी, घर में विरोध था, घर वाले स्वीकार नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं था, पर मां ने एक बात कह दी थी, उसके मुंह से कैसे निकला नहीं, कि बेटा जो तूने विश्वास किया उसमें बने रहना। और जब उनकी डेथ हो गई, सब कुछ हो गया, उनको घर से निकाल दिया गया, वो झांसी के स्टेशन पे पेपर अखबार बिछा करके और रात में सोए सोते थे। उसी समय एक प्रभु का जन वहां पर आ गया, उन्होंने उनको देखा, पूछा तुम ये पेपर में कैसे सो रहे हो, उनसे बातचीत हुई। तब उसके बाद प्रभु की दया से वो भाई उनको अपने घर ले गया और तब धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े। और बाद में चल के आप वो गीत सुनते हैं, मां वंदना करते हैं हम, और वो जो प्रोग्राम आता रहा मसीह वंदना, वो उसमें वचन लगातार देते रहे, कितने रेडियो प्रोग्राम, अब तो प्रभु में सो गए वो। और तब परमेश्वर ने उनको इस भारत देश का इतना अच्छा वक्ता प्रचारक बनकर खड़ा किया, कितने लोग उनके द्वारा प्रभु में आए। मेरे प्रियो, क्यों? वचन क्या कहता है? वचन ये क्या कहता है? कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, वो विश्वास में निर्बल नहीं है। अब्राहम विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। आज मेरे और आपके सामने कितनी साक्षी हैं विश्वास में निर्बल नहीं हुए। ये मेरे और आपको प्रोत्साहन देता है कि मुझे और आपको भी विश्वास में निर्बल नहीं होना। हमारा परमेश्वर सच्चा जीवित है। आखिरी आगे चल के 20वां पद, वो क्या कहता है? वो कहता है 20वें पद में, ये सब कुछ के बाद फिर भी ना केवल कह रहा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में वो अविश्वास के कारण विचलित नहीं हुआ, निर्बल नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ, बेचैन नहीं हुआ। अविश्वास आया, कई बार हमारे जीवन में संघर्ष होता है, हमारे अंदर अरे यह ऐसा होगा, अरे ऐसा होगा, अरे ऐसा होगा, ये मेरा विरोध करेंगे, मारेंगे, घर से निकाल देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे। कितना हमें सबसे ज्यादा डर क्या हो जाता है, हमें अपने परिवार का, हमें अपने समाज का, हमें अपने धन का, हमें अपने संपत्ति का। हम विश्वास करते हैं लेकिन अलगाव इसलिए नहीं करने पाते क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये डर उत्पन्न हो जाता है, ये भय उत्पन्न हो जाता है और एक मन बेचैन हो जाता है, व्याकुलता उत्पन्न होने लगती है। लेकिन वो क्या कह रहा है, इस अविश्वास के कारण वो विचलित नहीं हुआ, जबकि उसके ऊपर संघर्ष हो रहा है, क्या प्रभु ऐसा होगा, क्या ये बात पूरी होंगी, क्या ये लोग मेरे साथ देंगे, क्या मुझे ऐसा करेंगे, क्या फिरौन मुझे जाने देगा, कई सारे, क्योंकि वो मेरे और आपके समान मनुष्य। आज मेरे और आपको भी यही होता है, हम नहीं कह सकते कि भैया हम स्वर्गदूत हैं, जो व्यवहारिक जीवन है, आपके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, लेकिन हमें क्या करना है। अब्राहम ने क्या करा, अब्राहम की निर्भरता परमेश्वर पर थी। मुझे और आपको क्या करना है, मेरी और आपकी निर्भरता दिन पर दिन अपने जीवित परमेश्वर पर है, उस परमेश्वर को जिसको मैं और आप जानते हैं कि हम अपने कल को नहीं जानते लेकिन हम उसको जानते हैं जो हमारे कल को जानता है, उस पर हम विश्वास करते हैं, उस पर हम निर्भर। अब यह मतलब मैं नहीं कि हम जाके लड़के ओ मैं विश्वास करता मुझे कोई, ये मतलब बुद्धिमानिता। आखिरी बात वो क्या कहता है, ये सब कुछ के बाद वो 20 पद में क्या कह रहा है, परंतु परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ। परमेश्वर की महिमा करते हुए, परिस्थितियां कैसी हो, समस्या चाहे कितना हो, संघर्ष का कितना हो, लोग कितना कुछ कहें, ओ पिता तरह तरह के विचार होते हैं, तरह तरह की भावना होते हैं, हमारा परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना, तब हम उस चीज को पाने पाते हैं। मेरे प्रियो, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रस्तुत नहीं कर सकते। यही चीज है जो बाइबल में है और संसार में नहीं है। संसार में ज्ञान है, संसार में तरीके हैं, संसार में विधियां हैं, संसार में तरह के तरह लोग हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये नहीं है कि वो परमेश्वर जीवित है और उस पर हमें विश्वास करना, और वो परमेश्वर कौन है। ट्रेन में आप जाते हैं, आप देखते हैं ट्रेन में चल रही है, उसको छू रहे हैं। भैया उस लोहे को छू के क्या करोगे भैया? मैं अचल में था, विश्वकर्मा पूजा के समय में लोग लाते थे सब कुछ, मैं मना कर देता था। कई सारे अनुभव बहुत अच्छा है, प्रभु परिस्थितियों में लेता गया, तब प्रभु ने मुझे समझ दी कि मैं उनको समझ जा सका क्यों ऐसा है या क्यों नहीं ऐसा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है। वो कह रहा है सब कुछ में वो दृढ़ रहा, कोई उसको हिला नहीं सका, कोई उसको डहा नहीं सका, वो खड़ा रहा। और इसलिए आज हम अब्राहम का नाम लेते हैं, आज अब्राहम पूरे विश्व के लिए एक आशीष का कारण बन गया है। मेरे प्रियो, ऐतिहासिक रीति से देखिए, भौगोलिक रीति से देखिए, आध्यात्मिक रीति से देखिए। अगर इतिहास की रीति से देखें तो आप उन देशों को देखिए जो आज उसके वंश से चले आ गए। भौगोलिक रीति से तो उनको देखिए। अगर आपको आत्मिक रीति से पलचन की सच्चाइयों को देखिए जो आज भी है, मेरे प्रियो वो ऐसा रखिए। और इसलिए कहता है कि उसने परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर महिमा की। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। 21 पद में कहता है और पूर्णतः आश्वस्त, क्या कह रहा है वो, और पूर्णतः आश्वस्त होकर कि जो प्रतिज्ञा उसने की थी वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। कौन? परमेश्वर। जो प्रतिज्ञा उसने की है वो परमेश्वर प्रतिज्ञा करने के लिए समर्थ है। यदि उसने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो अपनी प्रतिज्ञा में हां और आमीन के साथ सामर्थ है। किसी ने कहा है कि परमेश्वर ने हमें ब्लैंक चेक दिए हुए हैं, वो प्रॉमिसेस प्रतिज्ञा उसकी ब्लैंक चेक के समान है। मैं जो भाई लोग यहां पर हमारे साथ रहते हैं, मैं इनको हमेशा जब डिवोशन होता है बात करता हूं, मैं इनको सिखाता हूं, बोलता हूं कि आपको प्रार्थना में प्रतिज्ञाओं को क्लेम करना चाहिए, प्रतिज्ञाओं को क्लेम। ये सच्चाई है, वो यही है, यही बात कह रहा हूं, क्योंकि उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हां और आमीन के साथ हैं। अब आप प्रतिज्ञाओं को क्लेम करते रहिए लेकिन आज्ञा का पालन ना करिए, उस पर निर्भर ना रहिए, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं पूरी होंगी। इसीलिए आखिर में इस चीज को आया है, पहले उसने ये किया इसलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। पहले उसने आज्ञा पानी, वो परमेश्वर पर निर्भर रहा, वो विश्वास में विचलित नहीं हुआ, वो दृढ़ बना रहा, वो उसने संघर्ष का सब कुछ करा और तब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर निर्भर रहा और परमेश्वर ने प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। ऐसा परमेश्वर है, ये क्रम है। और जब हम इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करते हैं हमारा आनंद बढ़ जाता है। सो मेरे प्रियो, सच्ची बात यह है कि एक मसीह जीवन केवल विश्वास करके बैठने वाला नहीं है लेकिन विश्वास करके आगे बढ़ने वाला है, और इन सिद्धांतों के साथ वो आगे बढ़ता है, इन तरीकों के साथ आगे बढ़ता है। अब इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको पूछना है, अगर मैंने विश्वास किया है तो क्या मेरी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर है? क्या मेरी निर्भरता परमेश्वर पर है? मुझे पूछना है, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहा हूं? अगर कहीं गड़बड़ है तो मुझे परमेश्वर से प्रार्थना मांगनी है, हे परमेश्वर। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे और इस पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने जब अपने शिष्य से व्यवहार करते थे तो शिष्यों ने बार बार परमेश्वर यीशु से कहा हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा। और हमें अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए ताकि किसी भी परिस्थिति में चाहे कितनी विचलितता हो लेकिन हमारा विश्वास डगमगाने ना पाए, हम उस विश्वास में स्थिर हैं। प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये, हम मांगते परमेश्वर तुम्हारे दैनिक जीवन में हमारे विश्वास को बढ़ाइए ताकि संसार में हम आपके साथ चलते हुए आगे बढ़ सकें और प्रभु आपको महिमा दे सकें। और इसीलिए अब्राहम उस विश्वास के कारण परमेश्वर की महिमा कर सका। और तब मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा कारण बनेगा। मैं अक्सर लोगों के बारे में बोलता हूं, साक्षी देता रहता हूं बहुत सारी चीजों को, क्योंकि हम लोगों को जानते हैं जो हमारे आसपास है। बाइबल में गवाही है, संसार में बहुत गवाहियां हैं। एक पुस्तक है हम सब गवाह हैं, कभी आपको मिले या यहां पर भी होगी, उसको पढ़िए, कितने उसमें साक्षी हैं जिन लोगों ने इस विश्वास के साथ जीवन व्यतीत किया। प्रश्न यह है आप कहां पर हैं, मैं कहां, क्या हमने विश्वास किया? प्रभु धन्यवाद हो हमने उद्धार पाया, लेकिन आज प्रतिदिन की आज चाल में हम उस विश्वास को अपने जीवन में देख पा रहे हैं? क्या बढ़ पा रहे हैं? क्या आगे बढ़ते जा रहे हैं? क्या हम निराशा में गिरे हुए हैं, हताशा में गिरे हुए हैं, हार रहे हैं, परास्त हो रहे हैं? एक कदम आगे बढ़ते हैं, तीन कदम पीछे चले आते हैं, फिर कोई धकेलता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे चले आते हैं। क्यों? हमारी निर्भरता उन चीजों पर है जिनको हम देख रहे हैं, शायद हमारी निर्भरता परमेश्वर में है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम उस परमेश्वर पर निर्भर हो सके, उसकी प्रतिज्ञाओं पर निर्भर हो सके, कि उसको देखकर हम आगे बढ़ सके ताकि हमारा विश्वास दिन पर दिन बढ़े, परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो लेकिन हम उसको देखने वाले। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, परमेश्वर का वचन सच्चा है। उसने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैंने तुम्हें तांगूंगा, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि हम केवल विश्वास की बात ना करें, लेकिन विश्वास मेरा और आपका एक अनुभव बन जाए, एक अनुभव बन जाए, और हम उस परमेश्वर को जान सकें, उस पर बने रखें जो मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जो मेरे कल को जानता है, जो मेरे कल का बनाने वाला।